This is a News Laundry podcast, and you're listening to Reporters Without Orders.
Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Snigdha, and today I have with me two News Laundry reporters, Basant and Veena. Hello, you guys.
Hi. Hello.
And after a long, long time on Reporters, we have the man behind Constitution, Meghnad.
Hi. Hello, everyone.
Good to have you back,
Why
Meghnad.
Why am I not a reporter? I did a report yesterday, okay?
You are a reporter. You are a man with multiple talents.
Thanks, man.
How have you been?
I've been well.
Sir, we didn't want to hear
that. I have just gone home to Nagpur. I had gone home to Nagpur. And people who have been complaining on YouTube finally got to me and I got a haircut.
So, I know.
Yeah, my mom
sharp.
Made me get a haircut. So when I got out of the airport, she's like, chalo, let's go. To the parlor.
Straight to the barber.
I'm not going to let you enter the house unless you get a haircut. Wow. So I'm like, okay.
All right. Before we begin with this podcast, I want to tell all the new listeners about News Laundry. We are 100% ad-free news platform and we need your support to stay afloat. So please subscribe to us and be a proud member of a community that pays to keep news independent and free.
Yes. Please do. And plus, you know what? I want to say that we are able to do a lot of stories because of your contributions.
Yes.
A lot of media organizations nowadays are not able to do stories because they're ad funded and they don't have the resources a lot of times. We also don't have many resources. But the fact is that since you are paying us, that sort of responsibility is always in our head that we will always choose the best stories for you. And put our efforts into
Absolutely.
It.
Absolutely.
Also, if you're listening to this podcast on Spotify, Apple Podcasts or SoundCloud, don't forget to check out other cool stuff we do on our website, www.newslaundry.com.
That brings us to the favorite section, the perfect icebreaker. We don't need an icebreaker, but still, we'll start with bizarre news stories. And Basant. आपका नंबर आज पहले आ गया
मेरे पास इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो
विचित्र न्यूज़ रिपोर्ट
विचित्र हिंदी में बोले तो और ये खबर है भी विचित्र ये खबर है कि एक युवक है जो हनुमान जी की पूजा कर रहा था ताकि उसकी शादी हो जाए और शादी नहीं हुई और उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो उसने मूर्ति ही तोड़ दी है तो हेडलाइन है हनुमान जी की पूजा के बावजूद शादी नहीं हुई तो तोड़ दी मूर्ति
जैसे अतुल सर ने अभी बोला बैकग्राउंड से एकदम एजिटेट हो गए
गलत भगवान की पूजा की जा रही थी
की पूजा तो ब्रह्मचारी लोग करते हैं तो मतलब उसकी शादी तो होनी थी नहीं
पूजा वो गलत जगह पे पैरवी कर रहा था
एग्जैक्टली
ऊपसी डेजी
गलत वकील चुन लिया
फौजदारी मामले के लिए दीवानी हो गया
व्हाट अबाउट यू वीना
सो माय स्टोरी इज I mean, you have heard about a lot of like funny photo bombs that have happened. So
yes.
This one is also like very hilarious. BBC presenter Tom Brooke, who was in India for a special episode of Talking Movies. So he was in an auto introducing himself.
Yeah.
And exactly at that moment, there was a scooter which was like passing by.
Right.
Where there was a dog who was sitting like a proper person, like on his hind legs.
Oh,
and,
God.
You know, and there was this, he's looking so cute in that, and you know, the limelight was stolen from him.
Aww.
And everyone was talking about the dog, and yeah, the Twitter reactions were hilarious because these kind of things you will only find in India.
That's true.
Okay, so my story is there's this Italian artist called Maurizio Cattelan who has, you know, done this weird art. Exhibition of a banana stuck to a wall.
Oh yes.
Right?
Oh, yeah.
So his banana stuck to a wall has yeah. sold for like a ridiculous $120,000 yeah. or something each.
Mm-mm.
So wow. On Saturday, this guy comes and eats the banana. there's a guy called David Datuna
right.
who stunned the art world apparently when he chowed down on the banana taped to the wall. Okay.
Oh,
and
God.
Then people were shocked and they were thinking the artist will get upset. But the artist was very amused and the artist was like, no, he's creating his own art by eating my banana. That is what he did. So yeah, fun stuff in the art world.
Strange stuff is happening. सो माई बिजार न्यूज़, बसंत आप मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं कि मेरा बिजार न्यूज़ अमेरिका से होता है हमेशा, इस बार मेरा उत्तर प्रदेश से है. देयर वाज दिस ब्राइड, सो यू नो दे हैव दोज मास वेडिंग्स राइट, सो दे गॉट मैरिड इन वन ऑफ दोज मास वेडिंग्स एंड देन लेटर दे डिसाइडेड कि हम ढंग से शादी करेंगे. सो द ब्राइड ग्रूम ही अराइव्ड, ही वाज सपोज टू अराइव इन द आफ्टरनून, ही केम लाइक एट लेट नाइट. So she got really pissed and she got married to some other guy. and they locked up the bridegroom and his family. They took away all his valuables and they beat them up before the police arrived.
Oh, wow. Okay.
And one more. So onion prices obviously still haven't gone down. So there's this shop, a mobile phone shop in Tamil Nadu that is giving 1 kilo onions free if you buy a smartphone. So yeah, that's the bizarre news stories that we had. Now coming to stories that made news this week, the important news stories, obviously we have to start with the citizenship amendment bill,
right?
And we have our guru Meghnad to tell us.
Guru
Meghnad to tell us all about it. Meghnad, first of all, please tell us, what is this citizenship amendment bill?
Right. So, first off, I've done a piece on newslaundry.com. So, you guys should go check it out. It's called Explainer. What exactly does the citizenship bill aim to achieve? Now, the first thing is the citizenship bill. This is the second attempt that they have made to bring it to parliament, right? And it's very surprising because when they made the first attempt, which was in 2016, they sent it to a committee, parliamentary committee, for further scrutiny, right? And then it came back on January 2019. It took 3 years and then they passed it in Lok Sabha. But because the House ended its term, like the government ended its term and the House dissolved, the bill lapsed. So the interesting thing is now they have brought it back, but the amount of outrage it is receiving right now and attention it is receiving right now is way more than it was before. And I'm very confused why, because they haven't really changed the bill much. The intention is the same. So even Veena was asking me what the bill was about. So the bill is basically doing a very simple thing. They're changing the definition of illegal immigrants. So they are excluding certain religions from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. Namely, they are excluding Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians, which are supposed to be minority groups in these three countries, which are Muslim
persecuted
majority.
Persecuted minorities.
So persecuted, no. But the people who are persecuted will come here. They're just minorities there. And in a Muslim majority country, so these three. So they've changed the definition of illegal immigrants to remove these people. That is basically what it is. So it will be easier for them to get citizenship in India. It will be easier for them to get bank accounts, PAN cards, Aadhaars, driving licenses. They will be able to buy property, all of that.
Also, it will be shorter now. They just have to wait for 5 years, right?
Yeah, Instead of 5 plus 1.
Earlier it was 12 years.
So 5 plus 1 being, one will be like a short-term LTA which they'll get, and then they will get a long-term LTA after that. Long-term visa, not LTA, LTV. Long-term visa. So that is what they'll get.
So, I mean, I have a doubt. I mean, these are minorities of other countries, the neighboring countries, specifically three countries we mentioned. So there is a section called Ahmadiyyas in Pakistan who are like a proper minority. And yeah, there is a lot of violation against, you know, they practicing their religion. So will they also be considered, because now we have become very religion centric like that. So isn't that, I mean, how are we excluding them as such?
So the question was asked in parliament. So, okay, so we are recording this today, which is 11th of December, which is at 12 o'clock. At 2 o'clock, Rajya Sabha will start its debate.
Okay.
So 2 days before, which was on Monday, the bill was brought into Lok Sabha and it went for debate. The debate went all till midnight.
Seven hours.
Oh my God, there is something about this government and midnight hours. I mean,
That's so true. I was just thinking about it.
We cannot sleep at night.
Important things always pass
nocturnal
at midnight.
Nocturnal creatures, these people are.
I think they're just trying to recreate the, you know, and the midnight hours. Nehru.
You think they're inspired by Nehru that much, Meghnad?
एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट और नेहरू ने एक ही बार किया, हम तो पांच बार कर चुके हैं बॉस. सो एनीवे, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन लोकसभा एज वेल अबाउट व्हाई दीज स्पेसिफिक कम्युनिटीज आर बीइंग इन्वॉल्व्ड, राइट? एंड यू नो द फनी थिंग इज, सो द स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट एक्चुअली गेव अ नंबर ऑफ हाउ मेनी पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, एंड द नंबर इज 31,313, राइट? एंड दे हैव एक्चुअली सेड दिस, हिंदूज आर 25,447, सिक्स आर 5,807, क्रिश्चियंस 55, बुद्धिस्ट 2, पारसीज 2. There okay. are, yeah, so it's really weird how for 31,000 people they are doing this. They have not included other sects, like these are like sects in the within the Muslim religion, because according to Amit Shah's logic, any Muslim in these Muslim countries is not persecuted because they're in the majority.
So can we say that the immigrants from Myanmar, like the Rohingyas who are staying here, or other immigrants for that matter, are they under any sort of threat after this bill will be like?
So it's very interesting because even that he answered, he said ki Rohingyas Bangladesh se aate hai.
Okay.
Which essentially I think he was trying to say that Rohingyas go to Bangladesh first and then they try to come to India. So technically they are coming from Bangladesh.
Okay.
So which means that they will not get these special privileges. But you have to understand there is a lot of misinformation going on about this. Right. Of course, it's a thing about giving them special privileges in India and making their application shorter for citizenship, for naturalization. But it's not like nobody else can apply.
Yeah, so I was about to ask you, Meghnad, it's not like Muslims cannot apply for citizenship, right? They can very well apply for citizenship.
Absolutely.
Apart from Muslims, also Jews have been excluded, yeah, right? Why is that?
I don't understand.
Why is that?
Maybe, I don't understand. Maybe they just, I don't know, miss them? Or there are no Jews in these three countries, which I find hard to believe. Ek haath do to hoga jo persecuted. I mean, I don't understand this. Yeah. The other thing that they haven't included is atheists.
Yeah, exactly. Yes.
And atheists are actually a genuinely persecuted minority in both of these three countries.
अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो कहा जा रहा है कि संविधान का जो आर्टिकल 14 है, 14 का वायलेशन है, और दूसरी बात जो नॉर्थ ईस्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह क्या है, और तीसरा इसी में मैं ये जोड़ दूँ कि कुछ चीज़ें इस कानून, जैसे एक देश एक कानून की बात हो रही थी जब कश्मीर में 370 हटाना था, लेकिन इस कानून को कुछ बदलाव करके नॉर्थ ईस्ट में लागू किया जाएगा ऐसा हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर तीन चीज़ें हमें बताएं.
तो पहले तो आर्टिकल 14, राइट? तो पार्लियामेंट में भी काफ़ी MPs ने पहले इसी पे अपोजिशन किया था कि आर्टिकल 14 विच इज अबाउट हाउ द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दे विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज द आर्टिकल 14. तो अगर ये लॉ ला रहे हैं, मतलब बेसिकली सो लॉजिक ये था कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, right? It's bizarre because Amit Shah said there is something called reasonable classification. Matlab, jaise for instance mahilao ke liye agar aapko law banana hai, jaise maternity leave ka law banana hai, to unko special status dena padega under law, which will violate article 14.
Yeah.
Kyunki technically aap discriminate kar rahe ho ki ye alag hai aur उनको ज़्यादा मटर्निटी लीव, मतलब गर्भवती महिला है तो उसको ज़्यादा ये मिलना चाहिए.
आई थिंक इट इज़ अ क्लासिक आर्ग्यूमेंट फॉर रिजर्वेशंस आल्सो.
एग्जैक्टली. सो कास्ट, एवरीथिंग, राइट? सो ऑल दीज एक्सेप्शनल थिंग्स. सो द आर्ग्यूमेंट देयर दैट अमित शाह इज मेकिंग कि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है कि किसी भी एक ग्रुप को अगर आप क्लियरली डिफाइन करोगे और उनको एडिशनल बेनिफिट्स दोगे तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा और वो आर्टिकल 14 में नहीं आएगा, मतलब वो एक्सेप्शन है. अब बात ये है कि ये वायलेट करता है नहीं करता है, वो तो आप आर्ग्यू कर ही सकते हो. पार्लियामेंट में लोगों ने ये रेज़ किया है पर अब लोकसभा में पास हो गया है, अभी राज्यसभा में क्या होगा पता नहीं. अगर वहाँ पे भी पास हो गया तो फिर कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा. कोर्ट कैन एक्चुअली शूट इट डाउन कम्प्लीटली बिकॉज अ लॉट ऑफ लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स हैव बीन सेइंग दैट दिस इज़ एक्चुअली वायलेटिंग आर्टिकल 14, सो इट विल नॉट स्टैंड व्हेन इट एक्चुअली गोज़ टू कोर्ट. बट वो देखना पड़ेगा कैसे होगा. आपका दूसरा नॉर्थ ईस्ट का जो है, बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि जैसे NRC जो हुआ था उसमें काफ़ी हिंदूज भी एक्सक्लूड हुए थे, राइट? हाँ, तो इनिशियल लिस्ट में कुछ 12 लाख हिंदूज थे वो एक्सक्लूड हुए थे और 8 लाख मुस्लिम्स थे. बाद में वो सेकंड लिस्ट में नंबर्स चेंज हो गए, पर फिर भी काफ़ी हिंदूज थे. और ऐसे भी हिंदूज थे जिन्होंने BJP के लिए कैंपेन किया था, NRC के लिए कैंपेन किया था, तो उनको ऑब्वियसली बिट्रेयल टाइप फील हुआ. तो लोग कह रहे हैं, और मुझे इसका एविडेंस अभी तक नहीं मिला, मैं अभी पहले ही कैवियट दे रहा हूँ, कि ये बिल से वो हिंदू लोगों को नेचुरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम लोगों को एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं. पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को ही हम लेंगे. तो अगर आप ये लॉजिक NRC के लिए लगाओगे तो जो हिंदूज एक्सक्लूड हो गए हैं उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए, वो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी है, और बी, कि वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है, राइट? और अगर वो, फॉर इंस्टेंस, अगर उनकी फैमिली यहाँ पे जनरेशन से रह रही है, 3 जनरेशन से, और फिर भी एक्सक्लूड हो गए, तो वो किस देश को बोलेंगे कि वो परसिक्यूटेड है? उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे इंडिया में ही परसिक्यूट किया था. तो ये बहुत ही अजीब सॉर्ट ऑफ है. पर नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. नॉर्थ ईस्ट में हम सोच रहे हैं कि अरे ये जो मुस्लिम्स है वो इमिग्रेंट्स जो है जिनको एक्सक्लूड किया गया वो ये कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं. पर एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो डीपर है, वो एथनिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उनको तो कोई भी नहीं चाहिए, उनको तो हिंदू भी नहीं चाहिए, मुस्लिम भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, उनको तो इमिग्रेंट्स चाहिए ही नहीं, उनको उनका ट्राइबल कल्चर मेंटेन करना है, उनको अपनी एथनिसिटी और कल्चर उनको मेंटेन करना है, तो उनको सबको फेंकना है बाहर, राइट? सो उनका ऑब्जेक्शन और ज्यादा लेयर्ड है. वो तो बोल रहे हैं कि तुम ठीक है, तुम मुस्लिम्स को तो एक्सक्लूड कर रहे हो, बाकियों को क्यों ला रहे हो?
जी जी,
राइट? और यही अर्नब गोस्वामी भी बोल रहा है टीवी पे कि मैं अपोज करता हूँ बिकॉज इंडिया इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड फॉर इमिग्रेंट्स फ्रॉम एवरीवेयर, डजंट मैटर व्हाट द रिलीजन इज.
Arnab Goswami is completely changing stance, right? No. Yeah, that's what. Yeah. It was, not very surprising. Meghnad, why only these three countries?
Afghanistan,
Pakistan and Bangladesh.
So this was again asked in the Lok Sabha. Yeah. And Amit Shah answered saying it is because they have Islam as a state religion in their constitution.
Right.
That is why they are doing it. फॉर दीज थ्री कंट्रीज. तो लोगों ने पूछा कि म्यांमार और नेपाल और श्रीलंका से क्यों नहीं? तो उसका ये कहना है कि राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दीज थ्री कंट्रीज बिकॉज वी हैव रिपोर्ट्स दैट देर इज अ लॉट ऑफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज. आई थिंक ये 31,000 लोगों के लिए किया है बेसिकली.
कल तो सुधीर चौधरी कह रहे थे कि ये जब लागू हो जाएगा तो 2 करोड़ लोग जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी.
पर ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाई सुधीर चौधरी या किसी भी?
उन्होंने 2 करोड़ का जिक्र किया.
एग्जैक्टली. पर वही मैंने भी ये फिगर देखा है कहीं पे, पर ये कहाँ से अजीब फिगर लेके आ रहे पता नहीं, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट के क्वेश्चंस देखे, मैंने स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट देखा और मुझे ये एक ही फिगर मिला, 31,313 पीपल. और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बोला है, ठीक है? तो मतलब ये क्रेडिबल है, और कमिटी को बोला है तो मतलब ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है. तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो भी इसको डिफेंड कर रहे हैं वो ये सीधा क्यों नहीं बोलते कि 31,000 लोगों के लिए कर रहे हैं. ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, इंडिया में है, उनको राइट्स नहीं है, उनके लिए कर रहे हैं हम. आगे जो भी ऐड होंगे वो देख लेंगे. पर अगर अमित शाह के लॉजिक से या BJP के लॉजिक से 1950 से लेके अभी तक 31,000 लोगों का परसिक्यूशन हुआ है, ठीक है, और उनको सिटीजनशिप अभी डिले हो गया है एक्सेट्रा, उनको राइट्स नहीं है, तो फिर आगे जाके कितने बढ़ेंगे पता नहीं. नेक्स्ट ईयर 100 हो जाएंगे और 200 बढ़ जाएंगे, वॉट एवर, जितने भी लोग हैं. मुझे लगता है ये जो बिल है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? देर इज नो डाउट दैट देर आर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, राइट? देर इज नो डाउट दैट सम ऑफ देम हैव कम टू इंडिया, क्लियरली देर आर सम. बट व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद इज व्हाई आरंट पीपल बीइंग एक्यूरेट व्हाइल रिपोर्टिंग इन फेवर ऑफ दिस और रिपोर्टिंग अगेंस्ट इट. मतलब रिपोर्टिंग नहीं बट क्रिटिकिंग इट, राइट? अगर आप इसको NRC के साथ जोड़ रहे हो तो उसका लॉजिक भी समझिए ना आपकी. वो NRC किसके लिए हुआ था? वो एक अपडेशन एक्सरसाइज था असम में. और अभी जो आप ऑल इंडिया NRC बोल रहे हो वो कैसे करोगे? कोई लेगेसी डेटा तो है, कोई हमारा रजिस्टर तो है नहीं. तो पीपल आर नॉट आस्किंग दीज क्वेश्चन.
going back to Amit Shah's argument about all these three countries having Islam as the state religion, right? One of the arguments that I was reading about is that the statement of objects and reasons to the bill takes strong exception of a particular religion being declared as state religion in Afghanistan, Pakistan, yeah. Bangladesh. Does that mean that they no longer want to make India a Hindu Rashtra?
So, you know, it's interesting how this whole thing is turning out, because people are constantly saying, and I think this is true to a certain extent for now.
Right.
Caveat for now. Mm-mm. That Indian Muslims will not be affected.
Yeah, that's right? What he said.
But
Amitcha.
The danger here is that the persecuted minorities, the definition ki wo jo word jo aaya hai, wo rules mein aaya hai. Wo passport act ke rules mein aaya hai. Right? So they can change the rules whenever they want.
Okay.
Right? So that is the danger there. That, you know, abhi bol rahe ho persecuted minorities hai. But aage jaake jab aap shayad NRC karoge, to fir usme change karke aap actually include karoge.
Right.
So the point is about this law as it exists right now, and then giving rulemaking powers under that one act, wo kabhi bhi change ho sakta hai. To डर लग रहा है लोगों को कि ये क्या करेंगे आगे जाके. तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट है, और लेजिटिमेट प्रोटेस्ट है. आई मीन लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट द प्रोटेस्ट आर रॉन्ग. आई एम जस्ट सेइंग दैट जो रेटोरिक जो चल रहा है दोनों साइड से, वो थोड़ा सा मिसगाइडेड लग रहा है अभी.
या बिकॉज एवरी टाइम यू नो every the major critique is that it's a violation of article 14.
Yes.
And in response Amit Shah keeps bringing up partition.
Right.
That partition was done on religious basis.
Right.
So, but so then in that
what
case...
What is the logic behind that?
Hmm. Okay, but I mean, if partition was a logic, then what is Afghanistan doing? I mean, I'm a bit confused.
Afghanistan.
Yeah, so... I mean, how is he justifying Afghanistan?
It's very weird. So again, that partition thing. So he said something very controversial in Lok Sabha as well, that Congress was responsible for division of India on the basis of religion, right?
Right.
The thing is, it's very interesting because he's now saying that that Pakistan is obviously a
Muslim country
which was formed on the basis of religion. Hmm. But India, on the other hand, chose to be secular. Hmm. We didn't define a state religion. In fact, in our constitution, we are saying we don't discriminate based on, you know, religion. Now, if he's saying that we were divided based on religion, it's true for Pakistan, but it's not true for us, right? It's not essentially true for us.
Mm-hmm.
So it's kind of, you know, conflating the argument to another level. Mm-hmm. And as you said, Afghanistan kahan se aa gaya? Right? Like, teen countries kyun hai fir Pakistan aur Bangladesh hota. Afghanistan kahan se aa gaya?
Exactly.
Right? Aur fir if you want to include Afghanistan, Indonesia ko kyun nahi include kiya? Indonesia is also a Muslim majority country. I mean, they don't have a defined state religion, but it is. And there might be persecuted minorities there as well. It's very bizarre.
Yeah, even Ram Madhav, in an opinion piece for Indian Express, he said, this bill will come as a big boon to all those hapless people who have been the victim of partition and the subsequent conversion of three countries into theocratic Islamic republics.
The one more thing they're doing is they're throwing around these figures about the reduction of minority population.
Oh, yes.
Right?
Yeah, in these three countries.
Justify yes. उनका लॉजिक है कि कुछ 20% माइनॉरिटीज थे 1940s में, और वो कम होके 1.5% हो गए. बट पार्टीशन हुआ था तब, राइट? लाइक 1950 के बाद अगर आप सेंसस ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो हिंदूज थे, जो ऑब्वियसली वहाँ पे बोला गया है सीधा कि तुम वहाँ पे बस मुस्लिम रहेंगे, तो वो आ गए इस साइड में, सिख आ गए, सब सॉर्ट ऑफ रिलीजन्स यहाँ पे आ गए. तो इफ़ यू आर सेइंग कि रिडक्शन हो गया है, क्योंकि आई वॉज लुकिंग एट अ पीस विच वी हैव डन एक्चुअली अबाउट हाउ द पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान हैज रिमेन्ड कॉन्स्टेंट सिंस 1950s. It has actually grown by 0.1%, right? So, ye jo figures there, jaise kal I think Piyush Goyal went to an event and he gave these same figures, but he said ki population jo 1950 mein tha wo 22% tha, which is wrong. 1940s mein 20% tha, aur uske baad partition hua aur log yahan pe aa gaye. I mean, that's it, end of story. Aur abhi wahan pe minorities hai kafi, kuch persecuted minorities hai definitely. but why are you like justifying this based on some wrong data that you're throwing around?
BJP ने एक ट्वीट किया था जिसमें बताया था कि 1947 में बांग्लादेश में इतने हिंदू थे, अब इतने हैं. 1947 में बांग्लादेश था ही
नहीं. Exactly.
तो इस तरीके से.
So yeah, misinformation is being spread.
And I think, you know, this time BJP has done their homework a lot more than other people. And I think one of the reasons why is because this went for scrutiny.
Right.
तो ये जो arguments थे सब, ये पहले already deal हो चुके हैं standing committee में. If you bother to read the report, anybody bothers to read the report, वहाँ पे सब members ने ये questions पूछे हैं जो आप लोग पूछ रहे हो, और ज़्यादा भी पूछ लिए थे. ठीक है, कि क्यों कर रहे हो, कितना होगा वगैरह, whatever whatever other articles which it's violating etc. उसके सब answers दिए, सब intelligence bureau raw security threat है क्या, उससे लेके government के home ministry के officials ने सबने responses दे दिए इस पे.
Right. Well, another interesting thing that happened was Maharashtra's Shiv Sena's response to the citizenship amendment bill. First they were like, okay, we'll support, and then they were like, oh, okay, maybe we'll not support in the Rajya Sabha.
So they voted in favor in Lok Sabha.
Yeah, exactly.
And now they are saying that they will consider what
they will think about it.
Rajya Sabha.
Exactly.
And I think Sawant, Arvind Sawant Shiv Sena ka, usne ek statement diya ki whether they will support or not, and he said ki haan hum sochenge par ek koi party ke monopoly nahi honi chahiye. ये बस मैं बोलना चाहता हूँ कि एक कोई पार्टी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए. बस आई रोल.
दैट ब्रिंग्स मी टू समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट गॉट लॉस्ट इन द होल हुआ अराउंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मेघनाथ विच इज सपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टुडे एज वी स्पीक. And the bill allows for transfer of certain types of personal data overseas, but it has given broad powers to the government agencies to collect personal and sensitive data of citizens.
Yes. So I'm still reading it. It's a long bill. It's 70 pages long. But on an initial reading, it's an extremely problematic bill.
Yeah.
What I think is going on is that now I think the government is seeing the internet and social media and all of these things as a threat.
Right,
because print media को तुमने control कर लिया, TV media को control कर लिया, but इसको control करना is another ball game.
Right?
Plus all the social media we are using is based on US, वहाँ के लोगों ने बना के रखा है, तो उनको कोई data मिल नहीं रहा था. WhatsApp पे सब encrypted है, all of that crap.
Yeah.
So now they want to bring in laws. Plural,
yes.
Which will be help them control this.
Right.
And this data protection bill is exactly that. Basically, it's like personal data protection bill. So it's like the government wants to protect your personal data.
Yeah.
But not from itself.
Exactly.
They want access to all of your personal data.
So they're saying
others shouldn't get it.
They're saying personal data related to finances, health, sexual orientation, biometric, genetic, transgender status, caste, religious belief, all of this can only be stored in India and can only be processed abroad under certain conditions.
Yeah, and which will be prescribed later.
Exactly. Yeah. And also the bill excludes Aadhaar number.
So they're saying actually they're defining this term called data fiduciary, which means that any entity which is storing and then processing data, etc., whatever, that is a data fiduciary. They will be processing, if anybody is processing this data, they will come under this act. But then they've included government in this.
Right.
Government agencies, etc., which includes UIDAI then.
Yeah.
But then there is another clause later which completely excludes them from this act. Like government ko ekdam in totality they can just whenever they want they will not obey this act.
Of course.
So it's fucked up.
Yeah. And one strange thing I read was passwords was also removed from the list of sensitive personal data. Passwords.
Oh, I haven't looked at this. I will have to look at this. That's actually very interesting.
Exactly. Anyway, moving on, Veena has been covering the JNU protests that are still going on.
Yes.
And you were there at the march that the students
on December 9th.
Yes, on
Monday,
December 9th to Rashtrapati Bhavan, right?
Mm-hmm.
So what's going on, Veena? What is new?
So, I mean, I think most probably they'll be organizing another protest because right. students are hell-bent on they'll not be joining classes or will be giving their exams. So, their final examinations are due.
Right. This has been happening for 40 days now?
It has crossed more than 40
it's
days.
It's been more than that. Huh?
Yeah, it's been more than 40 days. And yeah, they have final examinations on December 12th.
Which they're not giving.
Yeah, the whole university is sort of shut down in a way. And yeah, the students are like, there's no point in giving examinations because once we give it, I mean, what is the point if we cannot register for another semester because we cannot afford to do it.
Right. So Veena, tell me how many students actually, what percentage of JNU students actually come from underprivileged backgrounds?
A rough percentage is 40% of...
That's a huge number.
Yeah, and around 8,000 students study in JNU. Mm-hmm. So 40% of that... I mean, it's a good number.
Right.
And so I've spoken to these students. So these are students whose parents are working as farmers who hardly have 10,000 to 12,000 per month income. Mm. So if this fee hike is implemented, their per month rent would come around, like if you are in a double occupancy room, it would come around 6,100. And if you are for a month.
That's a lot.
Yeah. And if you are in a single occupancy, it will come around 10,000. So which makes, I mean, students won't be able to study. So 10,000? This is a total expense. So for a single occupancy room, they are paying 20 rupees, which would be increased to 600.
Okay.
And the double occupancy room for which they are paying 10 rupees, which will be increased to 300 rupees.
Right.
So, but there are other expenses as well, right? So they have their normal examination fees, the college fee, the newspaper, food. There's so many expenses that come. I mean, studying in a city like Delhi.
It is expensive.
Yeah, it's quite expensive. So it would be a huge hit on like 40% of students in JNU, and they won't be able to study. And they're very like, you know, there's no point in giving examination because we won't be able to study.
So basically the room rent has been increased from 10 to 300 and 20 to 600. Have they raised other expenses as well?
पहले ये होता था कि जो मेस है, मेस का बिल या जो मेस में काम करने वाले लोग हैं, उसके बदले स्टूडेंट को कुछ नहीं पे करना होता था. अब जो कर्मचारी काम करते हैं मेस के अंदर, उनको जो सैलरी दी जाएगी, उसके लिए स्टूडेंट को ही पे करना है 1700 रुपये पर मंथ.
अच्छा.
That is also adding up in this final figure.
तो मतलब just room rent ही नहीं, पर और भी expenses बढ़ रहे हैं उनके.
Just mess and room.
Mess and
हॉस्टल में रहना और कैंपस में पढ़ाई करना, जो अभी डेटा है जेएनयू को हम सब मानते थे कि बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे गरीब परिवार का लड़का आके पढ़ सकता है. लेकिन अब ये हालात हो जाएंगे अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो, कि दिल्ली मतलब सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सबसे महंगी यूनिवर्सिटी जेएनयू
हो जाएगी,
जबकि वहाँ सबसे ज्यादा बैकवर्ड और वंचित समुदाय से बच्चे आते हैं. तो इसी को लेकर इसका प्रोटेस्ट चल रहा है.
और फिर इसका रिस्पॉन्स क्या आया है फ्रॉम द administration? Has the VC responded?
So that is their main point. So the vice chancellor has not spoken to them even once after
after all this.
Yeah, all this. So even the MHRD, I mean, I don't know if they are acting innocent or something, because they have also come up with the meeting like twice, and vice chancellor didn't even attend that meeting. So so vice chancellor is just being like, फर्क पड़ता है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, ठीक है, आई मीन दे'ल इट विल ऑल काम डाउन.
वाओ, दैट्स
वी नो. टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द जेएनयू टीचर्स फेडरेशन?
ओके, सो व्हेन आई रीच्ड, सो दिस डिसेंबर 9 मार्च व्हिच टुक प्लेस दिस मंडे,
राइट,
सो देयर वाज दिस जेएनयू टीचर्स फेडरेशन व्हिच वाज न्यूली फॉर्मड, एंड इट वाज अ ब्रेकअवे फैक्शन फ्रॉम JNU Teachers Association. So these teachers,
which is also supporting the protests, right?
So apparently they are saying that they are supporting the protest,
yes,
but they are requesting the students to sit for the examination.
Yes.
And like bring back the calm environment JNU had, you know, the JNU, the university is getting all bad names, and you know, our image is getting ruined in a lot of ways. So that was one thing spoken. But then the students were completely disagreeing with it, and most of the teachers were from Sanskrit and Hindi department. I mean, the president and majority of the teachers whom I spoke to, and yeah, I mean, students were not ready to give examination, and they were like constantly asking them to give examination, which was like,
And there were a lot of controversial people in this organization. Like, for example, Professor Atul Kumar Johri.
I just wanted to come to that. Who is he and why was he being chased by students?
Yeah, it was really hilarious because he was made to run away from the campus.
Like, literally.
Yeah, like, literally. He sat on a bike, you know, but the bike, you know, were
so
stopped.
So he's been accused of sexual harassment?
Yeah, he was accused of sexual harassment where five to six female students had come up.
And when was this?
And this happened in 2016-17 at that time. And he was arrested last year. And yeah, and he was...
Under the same charges.
Yeah, and he was thrown out of the university also.
Okay.
After that. And this year, he was reinstated. And yeah, so the female students there got agitated that, I mean, why, what is he doing?
Right.
And there was sloganeering against him and then he was chased away. And yeah, and there were another, this Saurabh Sharma, jiska leke, I mean, Basant zyada bata payenge.
Saurabh Sharma. Haan. Basant kaun hai ye Saurabh Sharma? Inke baare mein humne pichli baar bhi baat ki thi, but for those who don't know, please tell our listeners.
Saurabh Sharma JNU mein student thi aur 2016 mein jo pura vivaad hua tha.
Ji.
Us waqt ABBP, jo Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad RSS ka jo ek ang hai, chhatra wing hai. उससे उनका संबंध था और वो 12 साल बाद सेंट्रल पैनल पे उन्होंने चुनाव जीता था जनरल सेक्रेटरी का. उसी साल कन्हैया और उमर वाला पूरा विवाद हुआ और सौरभ शर्मा के कंप्लेन पे ही इन लोगों पे देशद्रोह का मामला भी सेडिशन का. सौरभ शर्मा उसके बाद पिछले अभी जो पूरा विवाद चल रहा है सौरभ चुप थे जबकि पीछे मतलब 2019 से पहले जितने भी प्रोटेस्ट होते थे सौरभ शर्मा उसको रिप्रेजेंट करते थे जेएनयू की तरफ से. सब हैरान थे कि सौरभ शर्मा चुप क्यों हैं. बाद में जब पता चला कि वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं और किस तरीके से उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया तो हमने पिछले बार बात भी किया था और उसकी खबर न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पे.
बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज चेंज्ड इन ऑर्डर टू सूट सौरभ शर्मा.
उनको दो महीने के अंदर पीएचडी की थीसिस सबमिट करने के बाद
And he was also part of this federation. He was also standing there. I mean, so
the teachers federation.
कोई हैरानी की बात नहीं है. जब अपना पीएचडी थीसिस सबमिट करने जा रहे थे सौरभ शर्मा तो अतुल जौहरी उनके साथ थे और अतुल जौहरी पे इतने आरोप लग चुके हैं. उनको सेंटर ने रिमूव भी कर दिया था आरोप के बाद.
Right.
So this federation was, I mean, controversial in a lot of ways. So, but then students were arguing with these professors calmly, and yeah, but then they were definitely not tolerating Atul Johri's presence there, and you know, he was chased away. But yeah, the protest took place. It started at around 2. They waited for some examinations of the schools around to get over so that they don't create traffic jam. And so it was heavily barricaded. Delhi police and CRPF jawan, everyone were like, you know, quite prepared that anything can happen. So while they started moving, everything was fine. They're walking towards Rashtrapati Bhavan. And they knew that, I mean, they are going to walk towards Rashtrapati Bhavan. But the police officials also confirmed that we are not going to allow them to walk till Rashtrapati Bhavan. They are being told ki nahi nahi chalo hum bhi saath chal rahe hain hum tumhe rokne nahi wale hain kind of a thing. But Sarojini Nagar bus stop se pehle hum bus depot se pehle hum inko rok denge. This was, you know, a few constables you know, who were walking and I was talking to told me, and exactly that happened just below the flyover outside the Bikaji Kama place. So the students were directed towards this direction, that you are supposed to walk towards this direction. And the students were like, no, but then we are supposed to take a right here. And then there was a lot of confusion. Of course, lathi charge was used. And again, they sat on the middle of the road. They start protesting that we will walk. This JNU Students Union President Aishi Ghosh, she stood up and she was like, we are going to march towards the Rashtrapati Bhavan and we will use the other road. But then again, there was a second lathi charge where they were like beaten brutally. And trust me, there's nothing more dangerous than Delhi police with lathi. Okay, so I look like a student and it was like, and I was having my phone and I was recording and they were like, you do not look लाइक यू आर फ्रॉम मीडिया, बहुत बुरा होगा मैडम हम बता रहे हैं अगर आप अभी नहीं रोकें ये वीडियो लेना.
हाँ,
एंड आई वॉज लाइक बुरा होगा का क्या मतलब है, यू कैन आस्क फॉर द आईडी राइट, आई मीन हाउ डू यू स्ट्रेट अवे अक्यूज, एंड सो आई वॉज लाइक आई शो यू माई आईडी, बट देन ही वॉज लाइक नो बट यू डोंट लुक लाइक अ मीडिया प्रोफेशनल, आई मीन यू स्टॉप राइट नाउ, यू नो यू आर नॉट अलाउड टू टेक लाइक वाई यू वीडियोग्राफिंग इट काइंड ऑफ थिंग, एंड आई शोड देम एंड देन देयर वाज अनदर पुलिस ऑफिशियल हु केम.
बसंत, लास्ट क्वेश्चन अबाउट JNU, डू यू सी इट कमिंग टू एन एंड एनी टाइम सून?
जब 45 दिनों से लगभग प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्र चाहते हैं कि VC आके बातचीत करें, वो आ ही नहीं रहे हैं. प्रोटेस्ट की जो डिमांड है कि फीस कम हो, उसके अलावा जो डिमांड है कि VC हमसे बात करें, वो बात नहीं कर रहे हैं. JNU के छात्रों के अलावा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक प्रोफेसर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनपे वाटर कैनन से कल पानी भी उनके ऊपर मारा गया क्योंकि उनको भी नौकरी से निकालने की बात हो रही है. लगभग 5,000 एडहॉक टीचर हैं जिनकी नौकरी जा सकती है, जो पिछले 10 साल से कुछ, कोई 12 साल से कोई पढ़ा रहा है, उनकी पूरी एक जिंदगी खत्म हो गई. अब उस उम्र में नहीं रहे कि वो कुछ नया काम कर सकते हैं, उनकी नौकरी पे खतरा है. IIMC जहाँ पे छात्र पिछले 9 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, 2014 में जिस IIMC का फीस 55,000 था जिस कोर्स का, हिंदी जर्नलिज्म का, वो अब बढ़ के 95,000 हो गया है. अब और वजह यह है कि SC ST OBC की जो आरक्षित सीट है IIMC में, हर साल खाली छूट जा रहे हैं क्योंकि वंचित तबके का कोई छात्र 95,000 रुपये कैसे पे कर पाएगा. कोई गांव का लड़का 95,000 नहीं पे कर पाएगा, तो वो आरक्षित सीट जो रिजर्व सीट है वो छूट जा रहा है, कोई आ नहीं रहा एडमिशन लेने. तो अभी देश में हर जगह पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जहां हम एक तरह बात करें कि भारत विश्व गुरु बनेगा, यहां के गुरु ही कल सड़कों पे मार खा रहे थे, छात्र 10 दिन से 9 दिन से कहीं पे 45 दिन से बैठे हुए हैं. तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार JNU वालों को सुनेगी, वैसे भी JNU वालों पे टारगेट है.
दिस इज नॉट लिमिटेड टू JNU एनीमोर. सो इवन फॉर दिस मार्च आई थिंक देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम DU, आई स्पोक टू अ फ्यू DU स्टूडेंट्स, बट AIIMS एंड IIT स्टूडेंट्स वर ऑल्सो सपोज टू ज्वाइन. सो बट आई कुडंट स्पीक टू एनीवन, बट द स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट सेड दैट यू नो दे विल बी जॉइनिंग एंड दे हैव जॉइंड. सो बट या इट्स नॉट लिमिटेड टू JNU एनीमोर बिकॉज everywhere there is a fee hike and there's a privatization of education which is the students are protesting against.
फीस वृद्धि की स्थिति और सरकार संस्थानों को पैसे नहीं दे रही, इसकी स्थिति है कि IIT के जो चेयरमैन है उन्होंने अपने पूर्व छात्रों को लेटर लिखा है कि आप लोग अपनी साल भर की सैलरी का 1% कैंपस को दान करें. अपने जो उनके यहाँ से पास आउट हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि आपकी जितनी सैलरी है उसका 1% हमें दें. अब तक 250 करोड़ आ गए हैं, उनका टारगेट है 1,000 करोड़ का. तो इस तरीके से कैंपस पैसे जुटा रहे हैं. और IIMC वाले में एक छोटा सा चीज जोड़ना चाह रहा था कि फीस वृद्धि क्यों हो रही है. सरकार ने लगभग हर संस्थानों को, जो शैक्षणिक संस्थान है, उनको कह दिया है कि आप पैसे जनरेट करो. अब IIMC से और जो भारत सरकार के बीच MOU कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से, कि 30% रेवेन्यू आप कमाइए और 70% हम देंगे. अब कोई किसी भी संस्थान में जो मतलब उसका उपभोक्ता होता है जैसे IIMC में, वो पैसे कहाँ से कमाएंगे? तो छात्र से ही कमाएंगे.
बिल्कुल,
इसलिए फीस वृद्धि हर साल हो रही है. हर साल 10% फीस वृद्धि होते हैं IIMC के फीस में. यही हालत JNU के साथ भी है. JNU को भी कहा गया कि आप पैसे जनरेट करो. तो ये स्थिति है.
अनदर फैक्टर आई वांट टू पॉइंट आउट इज, आई मीन इट्स अ वेरी जेंडर रिलेटेड इशू आल्सो. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हाइक, देयर इज अ फी हाइक, वी आर फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी वी आर स्टिल लिविंग. सो इफ a family decides to spend a certain amount, they will choose that, you know, their son will go out
absolutely
and study.
Yes.
So this was also raised by a lot of female students who I spoke to.
Yeah, because it's so low, so families were like, okay, since it's so cheap, we'll send our girls.
Exactly, you know, exactly. So so it is also a very gender issue.
होता है ये गांव में जो बच्चे होते हैं, जो लड़का होता है वो private school में पढ़ता है, जो लड़की होती है वो सरकारी school में पढ़ती है.
Coming to an important story that we did cover last week with Aishwarya, immediately after that there was a very shocking news that came up, and we got to know that all the 4 accused were killed in a police encounter, it's possible that it was custodial killing. Everything pointed towards it. I wanted to talk about how some media outlets were actually lauding the police officers who killed the accused.
Yeah, and not
that
just
was
the
very problematic.
Right. So you know, it's very disturbing how everything is now an image problem. You know, everything from the economy to governance to everything is now an image problem. Yeah. So this whole percolation of this whole idea ki humko apna image achha rakhna hai is what is leading to like some very major consequences.
Right.
What I think is the Hyderabad police, as you said, it looked like a staged thing.
Yes.
You know,
yeah.
And a lot of people are saying that this is bullshit. Mm-hmm. How could you like take like four unarmed people in hatkadis, tell them to do like a scene recreation at 3 in the night, and then you shoot them dead?
No,
like,
the weirdest thing, Meghnad, was that first you're saying that the police, those cops who took them there, they were so incompetent that, you know, these four people, they got away and they snatched their lathi or revolver or whatever, and they started beating them up. And then suddenly the same cops become so competent that they managed to shoot all four of them.
Yeah.
And police ke anusar hathiyar ek bande ne liya. To ek ko goli maro na, तीन को क्यों मार दिए?
अरे वो बहुत अजीब जो भी है वो स्टोरीज तो मतलब वो एसआईटी ट्रोप होगा.
What we wanted to get to was how it was celebrated.
Yeah, exactly. So like as I was saying that it's a image problem. So I think Hyderabad police must have made a very calculated choice in this, right? One is I think KCR did not want a Nirbhaya type protest in the state, right? And the best way to get rid of something like this is to get rid of the four people,
right?
People are also like expecting instant justice now. The amount of people
MPs
who are saying
for lynching,
lynch kar do, ye kar do, wo kar do. There is genuine anger. There is genuine anger against the judicial system, against the processes, against implementation of a law. But that is converting into instant justice because sabko abhi chahiye, sab kuch abhi chahiye.
You know, but something that Basant said during Last Reporters when we were talking about the same case, that he was saying that it's not to do with people's unhappiness with the judicial system or the delay that happens, right? It's more to do with hatred.
That is it, right? You know? I mean, exactly that. Where jaise ab sochiye ki ye jo case hua, Hyderabad ka jo case hua. First thing is that the woman who was, I mean, like seriously, like a horrifying crime jiske against hua, she was a middle class job going person who a lot of people can relate to. Like people like us can relate to, and then we could feel that, oh my god, this can happen to us. उसके साथ ही नोएडा में एक पार्क में गैंगरेप हुआ था.
देयर वाज लाइक
दैट नोएडा दैट उनाव में दिस वुमन कॉट फायर एक्सेट्रा, बट दैट डिडंट गेट दैट मच अटेंशन, राइट? सो देयर इज द फैक्ट अबाउट हाउ द मीडिया इज रिपोर्टिंग दिस केस आल्सो इन दिस, राइट? नाउ इफ यू हैव एन इमेज प्रॉब्लम यहां पे वेयर द मीडिया इज हाईलाइटिंग वन पर्टिकुलर केस फॉर व्हाटएवर रीजन, फॉर हॉरिफाइंग, रिक्रिएटिंग द सीन, क्या वही स्कूटर पे थी जाके सुबह रात को वही कर रहे थे, वो अजीब कुछ किया उसने. Now, if you have something like this happening, you have to understand that people who are watching the news and consuming the media are also going to go by this angry sort of mindset that ye galti to ye char logo ki hai, baki kuch to ho nahi raha hai, right? And the only way to solve this is to kill them immediately, right?
Yeah.
If responsible media would start asking questions about, say, police ka response before the incident happened. And
it
was, they had given some very shitty response.
It was
response.
The same police who delayed filing the FIR,
they
right?
They didn't file the FIR. Yeah. They said ki tum phek rahe ho. Like literally, they told her ki tum, you're lying to us, right? And I mean, there are so many reports about that. But again, like when this whole thing is happening, the four people, instead of pointing out the inefficiencies of the Hyderabad cops to begin with,
right.
Cyberabad police, they start applauding them ki haan, tumhari त्यापे की वजह से एक इंसिडेंट हुआ, नाउ यू हैव सॉल्व्ड द क्राइम, अमेजिंग इमेज प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? एंड दैट इज द हॉरिफाइंग थिंग दैट इज हैपनिंग. लाइक थिंक अबाउट इट, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स इक्विवेलेंट, बट इट इज द सेम फेनोमेनन. जीडीपी और हमारा जो इकोनॉमी है उसमें देयर इज सो मच डेटा कमिंग आउट व्हिच इज दैट आवर इकोनॉमी इज जस्ट स्लाइडिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. आरबीआई इज रिड्यूसिंग एवरीथिंग, एंड इसमें गवर्नमेंट का सॉल्यूशन क्या है? अच्छा डेटा निकालते हैं.
Exactly.
Doctor
it's
करके
all about
या
the
फिर
image.
We'll send like a bunch of ministers to events और वहाँ पे वो अपने क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे.
It's all about outward appearances.
It's all about
and
image.
What is more scary is people are actually buying it in a very, I mean, people are actually using this data to argue for the government.
Exactly.
And they have been very, very smart in selling themselves like that, that even if we like put out data which is manipulated, we'll make sure that a certain section of people actually believe it and they will propagate it further.
They are doing it. And like for instance, Rahul Bajaj jaise log jab khade hoke bolte hai ki dekho, you need to understand that the criticism is for you. Yeah. I hope you understand why we are doing this. You send a troll army, man. Like minister pe minister ye kar rahe, tweet kar rahe, statement de rahe ki Rahul Bajaj kya bol diya, etc. Anti-national congress plant kya kya bol diya. So again, they don't understand that he's pointing out a legitimate concern out of ki tum government ho solve karo. Instead, you're attacking the guy because it's an image problem.
Also, I mean, you should not forget the fact that these four people come from a certain background, right? Mm. So these, they have like a certain caste associated, a certain economic background associated. So we have had influential people in past who are still sitting as MPs and who have been accused of horrendous crimes.
Yeah.
But then, will the police ever take them into a corner like and shoot them?
Forget about the police. Right? Do people want them?
Want them lynched?
Exactly.
Yeah,
exactly.
I mean,
right?
Then there'll be a mass uproar, I guess. Right.
Like people like Chinmayanand, like Ayush has done so many stories on this as well.
So
he's a horrifying person.
That Dera Sacha saw the guy.
Exactly.
He's been convicted. Yeah. But look at his supporters.
कुलदीप सेंगर पे जब आरोप लगा तो वहाँ के लोगों ने रैली निकाली थी कि हमारा विधायक निर्दोष है. आपने देखा होगा कश्मीर में जब कठुआ हुआ था तो एक रैली निकली थी झंडे के साथ. और जैसे आपने कहा कि इसको इतना ज्यादा तारीफ हुई पुलिस की, हैरानी वाली बात है कि एक समर कुल करके कंपनी है जो प्रोडक्ट निकालती है, ये शायद एसी वगैरह बनाती है, उसने परसों अमर उजाला में एक विज्ञापन छापा उसका, चार गए कितने बचे, देश करेगा इंसाफ, और तस्वीर में एक अपराधी है, उसके पीछे से ब्लड निकल रहा है और सामने से पुलिस गोली मार रही है.
What?
Wow.
और फिर उन्होंने अपना एड्रेस दिया है कि कहां कहां उनके सामान मिलेंगे.
Oh my God.
तो ये हैरान करने वाली बात है कि एक अखबार में अमर उजाला ने ऐसे विज्ञापन कैसे छाप दिए.
कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, मीडिया हैज बीन वेरी इरेस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू कवरिंग दिस इशू. नाउ मूविंग ऑन टू अ स्टोरी दैट शुड हैव बीन रिपोर्टेड मोर, लाइक सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी वर कंप्लीटली मिसिंग इन द कवरेज, वाज द दिल्ली फायर दैट हैपेंड, राइट? एंड बसंत, आप वहां गए थे, प्लीज बताइए.
रविवार सुबह, मतलब थोड़े से डिटेल बताते हैं स्टोरी के, थोड़ा सा बैकग्राउंड. रविवार सुबह एक अनाज मंडी जो करोल बाग के बिल्कुल पास में ही है
जी,
भी आधे 2 किलोमीटर दूरी पे आग लगी एक बिल्डिंग में. 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आग लगी
जी,
और उसमें 43 लोग मारे गए हैं, मतलब उनकी मौत हो चुकी है, 11 लोग घायल हैं, ये की हालत गंभीर बताई जा रही है. सबसे हैरान करने वाली बात है कि इसमें जो मरने वाले लोग हैं, बिहार के समस्तीपुर एक ही जिले के 10 लोग हैं, एक ही गांव के 10 लोग, एक जिले के एक गांव के हरिपुर गांव के 10 लोग हैं.
अच्छा.
एक सासाराम में गांव है, वहां के एक ही जिले के 9 लोग हैं. इस तरीके से मौत हुई है, लोग तड़प तड़प के मरे हैं. अगर आप लोगों ने किसी ने एक ऑडियो सुनी हो कि जब एक बिजनौर का एक मुशर्रफ नाम का व्यक्ति फंसा हुआ था, तो सुबह 5 बजे उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जो अपने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम चलता है ना, उसके लिए एक अच्छी समझ है कि देखो, मुशर्रफ ने फोन किया मोनू नाम के एक व्यक्ति को जो हिंदू है, हम जाति बता रहे हैं लेकिन जरूरी है इसलिए. उसने उसको फोन करके बोला कि भैया हम मर रहे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे पे इसका कर्ज है चुका देना, मैं इस जगह फंसा हुआ हूँ. वो लास्ट ऑडियो कॉल सुन के रोना आ जा रहा है और वो फोन पे कह रहा है अरे कूद जा बांच, कैसे भी कर ले. मोनू से मैं परसों मिला जहाँ मॉर्चरी के बाहर, वो व्यक्ति मर गया मुशर्रफ, तो उसकी उसके शव को लेने आया था मोनू. तो मोनू ने कहा कि मैं उसकी फैमिली की देखभाल मैं करूँगा, क्योंकि किसी उम्मीद से उसने मुझे फ़ोन किया था और मैं अपने दोस्त को बचा तो नहीं पाया लेकिन उसकी उम्मीद को पूरा करूंगा. उसके परिवार में कोई नहीं है, पुरुष के मामले में माँ है, बीवी है और 3 बच्चे हैं, तो उसने एक जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरा करूंगा. तो एक हिंदुस्तान है जहाँ पे तमाम चीज़ें हिंदू मुस्लिम के नाम पे होती है, तो एक मुसलमान जब मर रहा होता है तो फ़ोन करता है, अपने फैमिली में फ़ोन नहीं करता, अपने हिंदू दोस्त को फ़ोन करता है. और ऑडियो सुनिएगा, रोना आ जा रहा है. दूसरी बात, जब इसमें जो मिसिंग है
जी, जो मेन एलिमेंट ये है कि
गली है, गली में आप उस गली में अनाज मंडी के हर तीसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे प्लास्टिक का काम होता है, बैग बनाए जाते हैं, उसमें ज्यादातर गलियां ऐसी हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जाती, एक कमरे में 10-10 मजदूर काम करते हैं। रिपोर्टिंग हुई, लोग मरे तो रिपोर्टिंग खूब हुई, मतलब काफी चला, लेकिन धीरे धीरे लोग खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे। मजदूर किस हालात में काम करते हैं
ये मिसिंग था,
ये बहुत बड़ी चीज है और उसको मुझे लगता है पत्रकारों को इस पे नजर रखनी पड़ेगी कि मजदूर किस हालात में काम कर रहे हैं। मैं वहां कई मजदूरों से मिला, वो कह रहे थे कि मुझे तो लगता है वो बिहार के ही थे ज्यादातर, वहां 2.5 लाख बिहारी काम करते हैं, बिहार से आए हुए मजदूर एक ही इलाके में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब तो हम छोड़ देंगे, 11,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं, 9,000 रुपये मिलते हैं यहाँ काम करने के, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं, और आग लग जाएगी तो ऐसे ही जल के मर जाएंगे, तड़प तड़प के, किसी को बता भी नहीं पाएंगे। तो इस एंगल से जाना जरूरी है और जिम्मेदारी तय करना। घटना के तुरंत बाद बीजेपी ने आरोप लगा दिया आम आदमी गवर्नमेंट पे, आम आदमी पार्टी ने कहा कि MCD ही सारे पावर है MCD को, कि कहाँ लाइसेंस देना है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बननी है, कहाँ कंपनी चलनी है, इसकी जिम्मेदारी MCD की है। अब धीरे धीरे वो चीज़ भूल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जिम्मेदारी तय हो कि अगर आग लगती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा।
और बसंत, ये पहली बार तो नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही दरियागंज में आग लगी थी,
कल एक आग लगी और एक
कल,
कल yesterday,
so it keeps happening in this old Delhi area.
So yesterday in the reports, like the, ये न्यूज में देख, कल प्राइम टाइम कर रहे थे तब, बट बंच ऑफ लाइक इंग्लिश चैनल्स एक्सेट्रा वर रिपोर्टिंग, NDTV वाज टॉकिंग अबाउट दिस, दे आई थिंक CNN IBN वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस, दैट्स व्हाट दे वर सेइंग दैट यू नो ये जो आग लगी है, देयर वाज अनदर फायर यस्टरडे and nobody is noticing that, that's the that's the tragedy.
तो मैं इसमें बस मैं आखिरी ये कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में लेबर लॉ बहुत ख़राब है। आप कभी लेबर कोर्ट जाइए तो वहाँ मजदूरों की हालत ऐसी होती है कि 2-3 दिन 4 दिन आए के बाद वो कहते हैं कौन इस लफड़े में पड़े। हम जैसे लोग किसी कंपनी से लड़ने के बजाय 10-12 हज़ार रुपये वो अगर हमारा नुकसान ही करें तो छोड़ के चल देते हैं, चलो तुम रख लो खुश रहो। तो लेबर लॉ खराब है, उसके बाद मजदूरों की स्थिति बेहद ख़राब है हिंदुस्तान में। वो 400-400, 300-300 में एकदम, आप चांदनी चौक के इलाके देखें अंधेरा रहता है, मतलब गली में अंधेरा है तो कमरे की क्या हालत होती होगी। तो बहुत ही बुरे हालात में काम कर रहे हैं, और इस घटना से अगर सबक लेनी है तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि कौन जिम्मेदार होगा। क्या MCD जिम्मेदार है, क्या दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? मकान मालिक तो है ही, उसने अपने कमरे में ये तमाम चीज़ें करवाई वो तो है ही, लेकिन सरकारी संस्थान भी तो जिम्मेदार है कि उन्होंने वैसा करने दिया।
एंड नाउ एमसीडी हैज सील्ड अराउंड 7,000 units, सो फॉर एग्जांपल इवन दिस यूनिट डिडंट हैव अ फायर क्लियरेंस, दैट इज व्हाट द रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट, एंड नाउ दे हैव, सो वी वेट फॉर सम बिग इंसिडेंट टू हैपन,
टू हैपन
एग्जैक्टली, एंड आफ्टर दैट वी,
सो दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स इन हॉसखास एज वेल, राइट? हॉसखास में दे कीप सीलिंग एंड अनसीलिंग इट, एंड लाइक पीपल कीप चेंजिंग हैंड्स, लाइक प्रॉपर्टी कीप्स चेंजिंग हैंड, बट दे जस्ट डोंट सॉल्व इट,
राइट? राइट. Anyway, that brings us to the end of the podcast. We're running short of time. We'll end with some recommendations.
I have a recommendation. So I saw Hasan Minhaj's episode on Asian American voters and their growing influence in American politics. It was very interesting because he covered the whole time when Modi and Trump did that whole stadium stunt
in Houston,
and how he was not allowed to enter, and then there was this very funny clip there where he was talking to someone and saying, are you on a rise, and then some dude interrupted him from the side saying, Hasan, Hasan, you're anti-India, Hasan, Modi Hindu, say Hindu Modi, Modi Hindu. And then Hasan is like, dude, what? And then he's like, acha, no, come take a picture. He's a good guy. Difference of opinion, but good guy.
Like, it was hilarious.
It's very funny.
Yeah, and then
later he says that his family actually knows that guy, and he came for Thanksgiving dinner to his house.
And what about you, Veena?
So I'll suggest a movie, and I guess most of them might have watched it, but yeah, I'll anyway suggest it. It's The Irishman.
Oh yes, and absolutely.
It's a movie, right?
It's a three and a half hour, and it's beautiful.
I watched it over three sittings.
It features all the legendary people like Martin Scorsese, Al Pacino, and Robert De Niro, and yeah, of course it's
and
a
Joe
good,
Pesci.
Yeah, Joe yes, Pesci. Yes, yes,
oh
yes,
my God,
yes.
Pesci. Brilliant. Pesci.
तूने Pesci बोला?
Pesci.
मुझे अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है।
बसंत,
मैं इस बार मेरे पास दो हैं, जो एक तो जो लोग इनकाउंटर की तारीफ कर रहे हैं और फूल माला बरसा रहे हैं उनके लिए संडे को एक स्टोरी छपी है, हिंदी में भी BBC में सलमान रावी ने काफ़ी अच्छी स्टोरी की है, छत्तीसगढ़ के सार के गुड़ा पे, जहां 17 या 21 आदिवासियों को नक्सली बता के मार दिया गया था एक रात में, और जांच के बाद अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये बताया गया कि इनकाउंटर फर्जी था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने बीबीसी पे सलमान रावी ने हिंदी में किया है, और इस संडे को जो बिग पिक्चर आता है इंडियन एक्सप्रेस में, तो स्टोरी ऑफ अनदर इनकाउंटर के नाम से लंबा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इनकाउंटर करने वाले पुलिस की तारीफ करने से इंसान को बचने की ज़रूरत होती है। कई बार पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए इनकाउंटर कर देती है। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी अंतिम अध्याय अयोध्या का एक सीरीज हम लोग कर रहे हैं जिसमें राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े लोग तमाम पक्षकारों का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अतुल चौरसिया जी कर रहे हैं। तो ये पहला इसका सीरीज का पहला हिस्सा जफरयाब जिलानी का इंटरव्यू ऑलरेडी वेबसाइट पे मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, और बाकी अगले 3-4 दिन तक लगातार इस संबंध में हम वीडियो न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है।
एक और रेकमेंडेशन है अभिनंदन का जीडी बख्शी इंटरव्यू।
ओह यस, आई लव्ड इट।
इट वाज अमेजिंग। इट वाज वेरी वियर्ड टू सी हिम सेंसिबली टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स।
यू सी अ होल न्यू साइड।
या एंड द फन थिंग इज स्निग्धा वाज देयर व्हेन दिस हैपेंड।
यस,
सो या
ही वाज रियली नाइस टू मी।
या सो प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच दैट इंटरव्यू। आई promise you, you will not regret it.
So my recommendation this week is a comic strip memoir by Chester Brown called Paying for It. And it is based on a very controversial topic. So it's, he's this Canadian cartoonist and it's about his own life. He loses hope. I mean, he gives up on romantic love, on the idea of romantic love. So he starts paying for sex. And he's basically, it's about his life visiting different prostitutes and also advocating legalizing prostitution and the rights of sex workers and so on. It's really interesting. You should read it. All right, listeners, if you liked what you heard, please rate our podcast on iTunes or whatever platform you tuned into. We also have a bunch of other podcasts like Hafta and Awful and Awesome. Better the rating, more the reach, and that means more subscribers, and that in turn means better content.
और अगर ये podcast आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में साझा करिए, अपने social media site पे share करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और हम जो बात कहना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें।
Also, we are very eager to hear your feedback. So please write to us at contact@newslaundry.com with Reporters Without Orders in the subject line. You can also leave your comments on Twitter or Instagram. And with that, this podcast is adjourned.
All the News Laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes, and any other podcast platform.
Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. Catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport. Visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. And subscribe to our YouTube channel.